प्रेम से बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। आइए प्रातःकालीन स्वाध्याय प्रवचन में प्रश्नोत्तरी के ऊपर हम विचार कर रहे थे। पहले उच्चारण, पांच श्लोक का उच्चारण करेंगे प्रत्येक दिन। अपार संसार समुद्र मध्य समज्जतो मे शरणं किमस्ति, गुरो कृपालो कृपया वदैतत् विश्वेश पादाम्बुज दीर्घ नौका, बद्धो हि को यो विषयानुरागी, कावा विमुक्तिर्विषये विरक्तिः, को वास्ति घोरो नरकः स्वदेह, तृष्णाच्छय स्वर्गपदं किमस्ति, संसार हृत्क श्रुतिजात्मबोधः, को मोक्ष हेतु कथित सैव, द्वारं किमेकं नरकस्य नारी, का स्वर्गदास प्राणभृता महिंसा, शेते सुखं कस्तु समाधिनिष्ठो, जागर्ति को वा सदसद्विवेकी, किसत्रव सन्ति निजेन्द्रियाणि, तान्येव मित्राणि जितानि यानि, को वा दरिद्रो हि विशालतृष्णः, श्रीमाश्च को यस्य समस्ततोषः, जीवन्मितः कस्तु निरुद्यमोयः, किं वा मृतं स्यात् सुखदा निराशा। ओम श्रीकृष्णार्पणमस्तु। प्रश्नोत्तरी, बड़ा सुंदर ये छोटी सी मणिरत्न माला जगत गुरुवादि शंकराचार्य भगवान कृत है। आप श्रवण कर रहे थे बद्ध कौन है, बद्धो हि कोयो विषयानुरागी, जिसका विषय में अनुराग है वही बद्ध। परम पूज्य प्रातस्मरणीय अखंडान जी महाराज से बार बार कहा करते थे, आप सबने खूब श्रवण किया होगा, पर हम इसलिए बार बार स्मरण दिलाते हैं कि ताकि वह हमारे जीवन में उतरे। दवाई तभी तक खाई जाती है जब तक बीमारी दूर न हो जाए। बीमारी दूर हो गई, दवाई बंद, तो भवरोग की जो बीमारी है वो बीमारी जब तक तब तक दवाई तो खानी पड़ेगी। तो बार बार कहा करते पूज्य महाराज श्री कि आपने अपने शरीर में 99 बेड़ियां बांध रखी, एक और बेड़ी बांध लो। वो कौन सा बेड़ी पता है ना, स्वाध्याय सत्संग का। यह बेड़ी सारे बंधनों को बेड़ियों को छुड़ा देगी। उपनिषद में तो नाक नाम के ऋषि जो मुद्गल गोत्र में उत्पन्न हुए थे, नाको मौद्गल्य, वे बार बार कहते हैं स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम मां प्रमितव्यम, तद्धि तपः नाको मौद्गल्य, इससे बड़ी कोई तपस्या नहीं। संसार की सारी तपस्याएं उपासनाएं जो भी साधन है वे आपको बहुत से बहुत अधिक से अधिक ब्रह्म लोक तक प्राप्त कराएंगी। अब ब्रह्म लोक कैसा है, आब्रह्म भुवना लोको पुनरावर्तिनो अर्जुन, आने वाला जाने वाला। परंतु यह जो स्वाध्याय प्रवचन की जो तपश्चर्या है, ये भी तपस्या ही है। जैसे अग्नि में तपस्या, भूखे रहना तपस्या मानते ना, उससे बड़ी तपस्या। वेद व्यास भगवान जो 18 पुराणों के कर्ता हैं, वे कहते हैं मनसश्चैन्द्रियाणाम एकाग्रियम परमम तपः तज्जाय सर्वधर्मेभ्य सर्व परम तपोच्यते। मन इंद्रियों को बस में करके नित्य प्रति जो आत्मा का अनुसंधान है, यह सबसे बड़ी तपस्या है। जिसकी इंद्रियां मन में मन बस में नहीं, वह तपस्या हमेशा नहीं कर सकता। भाई महीना दो महीना आएगा, फिर आंख नहीं खुलेगी, आलस आ जाएगा, बुद्धि क्या बोलेगी, अरे वही प्रेमपुरी, वही कथाकारक, वही पुस्तक, वही वेदांत, वही चीज है। थोड़ा देर जाएंगे, चार दिन नहीं जाएंगे, तो क्या फर्क पड़ना है ना, बोलती ना मन बुद्धि, बुद्धि ऐसी बोलती। पर बुद्धि यह बात नहीं बोलती कि भाई चार दिन भोजन नहीं करोगे तो क्या फर्क पड़ना है, बचपन से जवानी बुढ़ापे तक खूब बढ़िया बढ़िया भोजन किया है ना मधु भाई, होता है कि नहीं? कभी ऐसी बुद्धि नहीं कहती। कोई भी आदमी कभी भी भोजन से पानी से प्रमाद नहीं करता, प्रमाद करता है। एकादशी है, महाशिवरात्रि है, श्री कृष्ण जन्माष्टमी है, रामनवमी है, फिर भी आप कोई न कोई विकल्प ढूंढ निकालते हैं, फलाहार का, बढ़िया बढ़िया पकवान का। पर आप ये नहीं कहते कि भाई 9 दिन की नवरात्रि, 1 दिन की जन्माष्टमी, 1 दिन की रामनवमी, महाशिवरात्रि, आज कम से कम भोजन मत करो, प्रमाद कर लो, मन ऐसा ही बोलता। इसलिए शास्त्रों में बार बार, एक बार ने कई बार कहा, स्वाध्याय रोचनाभ्याम मां प्रमदितव्यम, क्योंकि मनुष्य स्वाध्याय प्रवचन से प्रमाद करता है, अन्य चीजों से आप प्रमाद नहीं करते। आप करेंगे भी ना तो दुनिया वाले सावधान कर देंगे, अजी भोजन कर लो, चाय पी लो, तबीयत खराब हो जाएगी, डायबिटीज है, उम्र थोड़ी बड़ी हो गई, ख्याल करना थी, पत्नी बोलेगी, बच्चे बोलेंगे, सब नौकर तक बोलेगा। परंतु कोई यह नहीं कहेगा कि साहब स्वाध्याय प्रवचन से प्रमाद नहीं करना चाहिए, प्रमाद करेंगे तो क्षति होगी, ये तो केवल शास्त्र बतलाता है। तो इससे बड़ी कोई तपस्या नहीं, आप बहुत बड़े तपस्वी हैं। पहले मेरे को सब बात समझ में नहीं आती थी, अब 2-4-5 वर्ष से समझ में आ रही, 5 वर्ष से। पहले बोलता तो था, सुनता था, पढ़ाता भी था, परंतु ऐसे ही लिखा है, चलो कोई बात नहीं। पर अब समझ में बात आती कि बिल्कुल सही बात लिखी है कि हम बहुत बड़े पुण्यात्मा हैं जो हम लोग वेदांत श्रवण कर रहे हैं, स्वाध्याय प्रवचन कर रहे हैं, बहुत बड़ा पुण्य है। अब ये बात समझ में आती है इतने दिनों के बाद, आप हमसे ज्यादा बुद्धिमान है, जल्दी समझ में आ गई। नहीं, सही बात है, प्रशंसा नहीं है। स्वाध्याय प्रवचन वाले सिर्फ ये अर्थवाद नहीं बल्कि वास्तविकता है, सच्चाई है कि जीवन में स्वाध्याय प्रवचन उपलब्ध हो जाए तो मानो कि भगवान की बहुत बड़ी कृपा और जन्म जन्म के पुण्य पुंज का परिणाम समझना चाहिए। तो देखो, जिज्ञासा किया कि बद्ध कौन, बंधा हुआ कौन, तो क्या बोला, विषयानुरागी। विषय में अनुराग क्यों होता है, यह चिंतन करने का विषय। आपको ठीक से यह पक्का पता है कि परमात्मा एक सत्य है, वही हमारे साथ आज भी है, कल भी रहेगा, अब मरने के बाद भी। फिर भी हमारा मन विषयों में अनुराग क्यों करता है, तो ये सोचा आपने, इसका बीज क्या, कारण क्या है? हाँ, अनुराग इसलिए होता है कि विषय में अनुकूलता बुद्धि है। हमारी जन्म जन्म की भ्रांति है कि संसाधन से सुख हासिल होता है। यह जो अनंत जन्मों की भ्रांति है, और भ्रांति कहां होती पता है ना, अंतःकरण में। रज्जु में जो सर्प की भ्रांति हो रही है, उस भ्रांति ज्ञान का विषय तो सांप है, पर भ्रांति ज्ञान का आश्रय अंतःकरण है। तो हमारे अंतःकरण में जन्म जन्म की भ्रांति है कि विषय से, संसाधन से, ऐश्वर्य से, धन दौलत से, संसार के पदार्थों से सुख प्राप्त होता है। इसी भ्रांति के कारण हमारी इंद्रियां बार बार विषय की तरफ भागती हैं, और आप बार बार प्रयास करके अपने इंद्रियों को विषय से हटाकर निर्विषयक परमात्मा की तरफ लगाते हैं। बचपन से लेकर बुढ़ापे हम लोग समझो संग्राम कर रहे हैं अपने इंद्रियों के साथ, जैसे महाभारत संग्राम होता ना। महाभारत में कौरव पांडव दो पक्ष थे, कौरवों के पास 18 अक्षौणी सेना और पांडवों के पास कितनी थी, केवल 7 अक्षौणी सेना, बहुत कम। इतना ही नहीं, कौरवों के पास तो भगवान की नारायणी सेना भी थी और पांडवों के पास नियत थे भगवान श्री कृष्ण। उन्होंने संकल्प किया था मैं युद्ध में हथियार नहीं उठाऊंगा, फिर भी विजय किसको मिली, पांडवों को। ऐसे हमारे शरीर में अनादिकाल से महाभारत चल रहा, इस महाभारत का नाम है आध्यात्मिक महाभारत। भूत भौतिक महाभारत की कथा तो आपने 5000 पहले जो है ना सुनी, जो घटना घटित हुई आज भी सुन रहे, परंतु हमारे शरीर में हर दिन महाभारत चल रहा। परंतु इस महाभारत में तभी आपको विजय हासिल होगी जब आप भगवान श्री कृष्ण के शरणापन्न हो जाएंगे। अर्जुन ने कहा ना, कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव, पृच्छामि त्वाम धर्म समूढ़ चेता, यश्रेयस्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे, शिष्यस्ते हम साधि माम त्वाम प्रपन्नम्। देखो अर्जुन पहले भगवान को बुआ पुत्र मानता था, सखा मानता था, हंसी मजाक करता था। जब भगवान ने अपना विराट स्वरूप दिखाया, अर्जुन ने क्षमा याचना किया, सखेति मत्वा प्रसभम यदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, अजानता त्वाम महिमानम, मैं आपकी महिमा नहीं जानता हुआ जो परिहास किया, मजाक किया, आप उसको क्षमा कर देना। कैसे, पितेव पुत्र सखेव सख्यु, जिस प्रकार पिता पुत्र के अपराध को बिल्कुल नहीं गिनता है, सखा सखा के अपराध को, ऐसे आप क्षमा कर देना। तो अर्जुन जैसे ही भगवान के शरणापन्न हुआ, वैसे ही अर्जुन को भगवान ने आत्मज्ञान प्रदान किया, और अर्जुन आत्मज्ञान होने के बाद निष्काम कर्मयोग के रास्ते को चुना। भगवान ने बहुत सारे साधन बताए, कर्मयोग, सांख्य योग, भक्ति योग, बहुत सब कुछ बताया, त्याग योग बताया, पर अर्जुन ने निष्काम कर्मयोग को अपनाया और अर्जुन परम आनंद को उपलब्ध हो गया। ऐसे ही हमारे शरीर में नित्य प्रति संग्राम चल रहा। कभी बुद्धि कहती है अजी बहुत हो गया स्वाध्याय प्रवचन, कोई बात नहीं थोड़ा आराम करो, बुद्धि कहती कि नहीं बताओ ईमानदारी से, कहती है। परंतु यदि आप भगवान श्री कृष्ण को सारथी बना लेंगे। सारथी मतलब ड्राइवर। शरीर को उपनिषद में रथ कहा, शरीरम रथमेव इंद्रियाणि हयान विषया तेषु गोचर। शरीर हमारा रथ है, ये इंद्रियां हैं घोड़े, विषय रास्ते, और बुद्धि को का सारथी, और आत्मा है रथी। जब आप ऐसे रथ पर बैठेंगे और प्रणवो धनु प्रणव रूपी धनुष और आप आत्मज्ञान को सर बनाएंगे, तब जाके लक्ष्य को आप विद्ध कर पाएंगे। तो यदि हमने अपने जीवन में भगवान को सारथी बना दिया, तब तो शरीर रूपी रथ को बढ़िया से भगवान अच्छी तरह से गंतव्य तक पहुंचा देंगे। दुर्योधन ने सारथी सेनापति किसको बनाया था पता ना? हाँ, सबसे पहले भीष्म पितामह, फिर द्रोणाचार्य, फिर कर्ण और आखिरी शल्य महाराज। वैसे पांचवां अश्वत्थामा को भी बनाया था, पर चर्चा कम आती। एक दिन के लिए अश्वत्थामा भी सेनापति बना था। बड़ी रोचक कथा है, भीम के भयंकर गदा से दुर्योधन की जब कमर चूर चूर हो गई, बेचारा अकेले सम्रांगण में पड़ा हुआ कराह रहा था, उस समय रात्रि में अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कौन एक और थे मालूम, तीन थे ना, कृतवर्मा, तीनों गए। अश्वत्थामा ने कहा, मित्र हमने इन्नी आंखों से तुम्हारे ऐश्वर्य को देखा, संपदा को देखा, प्रतिष्ठा देखी, आज यह दशा देखकर मुझे बड़ी पीड़ा हो रही है। मित्र तुमने बहुत बड़ी भूल की, तुमने बूढ़ों को सेनापति बनाया, मैं कहा था ना मुझे बनाते तो ये दशा नहीं देखनी पड़ती, ये दुर्दिन नहीं आता। दुर्योधन बड़ा बुद्धिमान था, उन्होंने कहा देखो मैं मरा नहीं हूं, शरीर में प्राण है, जब तक मैं जिंदा तब तक मैं ही राजा हूं, आज मैं तुम्हें पांचवा सेनापति बनाता हूं। अपने रक्त से तिलक कर दिया, कहा कि देखो पांचों पांडव मारे गए तो राज्य आधा आधा, आधा तुम्हारा आधा मेरा, अब मैं भी मारा गया तो तुम्हारा पूरा राज्य। लोभ दे दिया, देखो निंदा की बात नहीं, हमारे महात्मा लोग कहते जब बैठते आपस में तो कि ब्राह्मण के अंदर लोभ ना हो ना तो भगवान उसके सामने दिन दहाड़े खड़े हो जाए, लोभ ज्यादा होती स्वाभाविक है, एक जींस में परमाणु वैसी स्वभाव है। तो अश्वत्थामा ब्राह्मण है, इसको लोभ दे दिया। अश्वत्थामा उसी समय चल पड़ा, रास्ते में विचार किया कि भाई कौन सी तरकीब अपनाएं, यदि दुर्योधन मर गया तो पूरा राज्य मेरा, और जिंदा रहा तो आधा आधा तो होना ही है, कौन सी तरकीब अपनाऊं कि पांचों पांडवों को रातों रात समाप्त कर दो। आगे बढ़ा तो क्या देखा, एक उल्लू कौओं को अकेले ही मार रहा, बस बोले यही हमारा गुरु है। दुर्योधन अश्वत्थामा ने उल्लू को गुरु बना लिया। उल्लू जानते ना, उल्लू रात को दिखाई पड़ता, दिन में दिखाई नहीं पड़ता। उल्लू को गुरु बनाकर चल पड़ा कि अच्छा मौका है, रात को पांडव सो रहे होंगे, सोते हुए पांडवों को मार कर उनके सर को लाना है, दुर्योधन भी खुश, और यदि बच गया तो आधा आधा, मर गया तो पूरा मैं राजा बन जाऊंगा। इस विचार से चल पड़ा। कृपाचार्य समझाए कि देखो हम महावीर हैं, ऐसे छल से घोर रात्रि में सोते हुए पांडवों को मारना ठीक नहीं। अश्वत्थामा ने कहा मामा जी यही धर्माधर्म तो हमारे पराजय का हेतु बना। अब धर्माधर्म चिंतन का समय नहीं, आप तो बाहर खड़े रहो, मैं स्वयं अकेले घुसता हूं। उधर भगवान श्री कृष्ण अंतर्यामी, उन्हें पता था कि आज गड़बड़झाला होने वाला है। भगवान ने कहा, देखो भाई, जब विजय श्री हासिल हो जाए तो भगवत दर्शन, संत दर्शन करना चाहिए, देवाचन करना चाहिए। चलो वहां चलते, फला जगह फला ऋषि के पास सत्संग करेंगे, आनंद से वहां पर जरा उत्साह मनाएंगे। भगवान पांचों पांडवों को लेकर चल पड़े। इधर पांचों पांडवों के पुत्र सो रहे थे, जैसे अश्वत्थामा पांडवों के शिविर में प्रवेश करना चाहा, वैसे क्या देखता है, भयंकर त्रिशूल लिए एक काल पुरुष। अश्वत्थामा समझ गया कि शिविर में प्रवेश नहीं कर सकता हूं, साक्षात भोले शंकर भूतनाथ कालों के काल महाकाल रक्षा कर रहे हैं, प्रवेश नहीं कर पाया। खूब वंदन किया, प्रार्थना किया, प्रभु मैं तो बस जा रहा हूं पांडवों के शिविर में, उनका दर्शन करना है, आप कृपा करो, रास्ता दो। जब वंदन किया, प्रार्थना किया, तो भूतनाथ ने रास्ता दे दिया, अंदर चला गया। सोते हुए पांचों पांडवों के सर को, पांचों पांडवों के पुत्र थे, पांडव नहीं थे, सर को काट कर लाने लगा। देखा तो धृष्टद्युम्न भी सो रहे थे, सर तो वही रख दिया, क्रोध से आग बबूला हो गया, इसने ही हमारे पिता की हत्या की है। महाभारत में आता है, पशु मारम अमारयत, उसको बाण से नहीं मारा, तड़पा तड़पा कर पशु की तरह से, बुरी तरह से गला घोट कर धृष्टद्युम्न का संहार किया। इसके बाद चल पड़ा, जब आया दुर्योधन के पास, कहा मित्र, तुमने एक दिन मुझे सेनापति बनाया, जब एक दिन में हमने पांचों पांडवों को अकेले ही समाप्त कर दिया, मैंने पहले ही बताई थी मुझे सेनापति बनाते, ये दिन नहीं देखना पड़ता। बहुत खुश हुआ दुर्योधन, का मित्र तुमने बहुत बड़ा काम किया, लाओ भीम का कौन सा सर है। सबसे क्रोध था भीम के ऊपर, भीमसेन के ऊपर, जैसे सर को दिया खुशी से लिया, जब हाथ से दबाया तो ककड़ी के समान फूट गया, रोने लगा, मित्र बड़ा तुमने अधर्म किया, ये पांडव नहीं हो सकते, जिस भीम की खोपड़ी हमारे गदा के चोट से नहीं टूटती वहां से टूट सकती, बड़ा अनर्थ हो गया, आपने पांचों पांडवों के सर को लाया, वही दुखी होकर शरीर छोड़ देता। तो देखो, यह जो जीवन है संघर्ष, दुर्योधन ने कितने बड़े पराक्रमी, जो देवताओं से भी जीते नहीं जा सकते, ऐसे भीष्म द्रोण को सेनापति बनाया, अश्वत्थामा को एक दिन के लिए बनाया, शल्य को बनाया, कर्ण को बनाया, बहुत बड़े सब महान योद्धा थे, अति योद्धा थे, धर्मात्मा थे, फिर भी विजय हासिल नहीं हुई, क्योंकि दुर्योधन ने अपने जीवन में भगवान के पल्ला को ठुकरा दिया था। सीधी बात कहें तो हम भी यदि, चाहे संसार का कितना ही बड़ा सहयोग हमारे पास हो, धन हो, ऐश्वर्य हो, संपदा हो, यदि हमारे जीवन में भगवान नहीं आए, यदि हमने अपने हृदय में, अंतःकरण में भगवान को नहीं बिठाया, भगवान को सारथी नहीं बनाएंगे, तो शरीर रूपी रथ, इंद्रियां रूपी जो घोड़े हैं, आपके कहां ले जाएंगे पता है, शोक सागर में डुबा देंगे। तुलना करें तो दुर्योधन के पास इतनी बड़ी नारायणी सेना, 18-26 सेना, इतने बड़े महारथी सेनापति भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण, शल्य और अश्वत्थामा, फिर पराजय क्यों हुआ? क्योंकि वो उसने अपना सारथी भगवान को नहीं चुना। तो हम यदि इस महाभारत के संग्राम में, ये जीवन भी संग्राम है, निष्पक्ष निर्मो भूत्वा न्यायाधीश सनस्थवत संग्राम स्व जनैरपि, शास्त्रकार कहते निष्पक्ष होके निर्मम होकर के न्यायाधीश के समान आपको अपने जीवन में संग्राम करना चाहिए। पर संग्राम में विजय हासिल करना है तो कहा कि भगवान को सारथी बना लो, बुद्धि सारथी विद्धि, जो बुद्धि है ना, तो बुद्धि को यदि आपने चैतन्य को बैठा दिया, इसी बात को वेदांत की भाषा में कहते हैं वृत्यारूढ़ चैतन्य। पौराणिक भाषा में कहते हैं कि अर्जुन ने भगवान को सारथी बनाया, ये पौराणिक भाषा। और उपनिषद की भाषा में कहते हैं वृत्यारूढ़ चैतन्य से अविद्या का नाश होता है। तो हमारी जो बुद्धि वृत्ति है, जिस बुद्धि वृत्ति के ऊपर घटाकार, पटाकार, मठाकार, ये संसाराकार वृत्तियां हो रही हैं, कभी रूप की, कभी रस की, कभी गंध की, कभी स्पर्श की, कभी शब्द की, और आप पांचों विषयों से बिल्कुल बंधे हुए हैं। जीवन में हमने अपने वृत्ति के ऊपर भगवान को, चेतन को सारथी बना लिया तो विषय आपको बाध नहीं पाएंगे। देखो हमारी मनोवृत्ति भगवान के चरणों में लग जाए, संत ब्राह्मण गोमाता के सेवा में लग जाए तो कहते हैं कि अनुराग भक्ति उपासना। वही मनोवृत्ति संसार में लग जाए, रूप के प्रति, रस के प्रति, गंध के प्रति, स्पर्श के प्रति, तो क्या बोलेंगे उसका, क्या नाम मालूम, मालूम है उसको, बोलेंगे बद्ध है, विषयी है, पामर है। शुद्ध नाम है वासना। दो शब्दों से कहे कि हमारी मनोवृत्ति भगवान में लग जाए तो उपासना, संसार में लग जाए तो वासना। कितना फर्क है, एक ही मनोवृत्ति का प्रवाह। प्रवाह जो मनोवृत्ति, इस बात को सुरेश्वराचार्य जी ने लिखा है अपने वार्तिक में कि देखो गाय का दूध कितना पवित्र है, जिसको अमृत कहते हैं, अमृत। कभी विचार किया आपने, वेद में गाय के दुग्ध को, घृत को अमृत क्यों कहा? आयुर्वेद घृतम अमृतम वही पय, इसलिए कहा क्योंकि अमृत का साधन है, इसलिए अमृत सबसे कहा गया। आप घी से, दूध से घी से आप हवन करते, घी से आप प्रत्येक दिन भगवान को दीप दान करते, वो जो घी का दीप दान है वही साधन आपको अमृतमय परमात्मा से मिलाने का काम करता, इसलिए कहा आयुर्वेद घृतम वय वय अमृतम। आप दूध से भगवान का अभिषेक करते, इसलिए दुग्ध भी आपके अमृत प्राप्ति का हेतु होने से अमृत शब्द का प्रयोग किया। तो देखो दूध कितना सुंदर पवित्र है, परवार्तिककार कहते हैं उसी दूध को यदि हम गाय के या कुत्ते के या पशु पक्षी के चमड़े में रख दे, नहीं गोक्षीरम पूतम स्यात स्वादृति धृतौ। स्व बोलते कुत्ता, कुत्ते के चमड़े में, पशु के चमड़े में गाय के दूध को रखकर कोई देश श्रीमान जी बड़ा सुंदर देसी गाय का शुद्ध केसर मिश्रित दूध है, क्या पिएंगे बताओ ईमानदारी से? हटाओ, पीने लायक नहीं, क्रुद्ध हो जाएंगे आप। है तो दूध, क्योंकि वह जो दूध है ना, उसका संपर्क हो गया अपवित्र उस चमड़े के साथ, तो आप ठुकरा देते। और उसी दूध का संबंध यदि आप भगवान को भोग लगा दिए तो क्या बोलते? अमृत है, भगवान का महाप्रसाद है। मात्र दूध का संबंध किया हमने भगवान के साथ तो महाप्रसाद अमृत बन गया, और संबंध किया पशु के चमड़े के साथ तो हो गया वह आपका बिल्कुल अशुद्ध हो गया, अग्राह्य त्याज हो गया। ऐसे ही हमारी मनोवृत्तियां सिर्फ केवल भगवान से संबंधित हो जाए, संबंधित होते ही आप लोग भगवत भक्त बोलते। इतना ही नहीं, मरने के बाद भी आपका नाम अमर हो जाता। आचार्य शंकर भाष्य में कहते कि भाई बताओ अमर कौन है, तो उत्तर दिया यस्य कीर्ति सजीवति। मर कर भी कौन इंसान नहीं मरता है, सवाल किया तो उत्तर क्या दिया कि जिसकी कीर्ति है ऐश्वर्य नाम, वह मर कर भी अमर है, जीवित है। जैसे मीरा, नरसिंह मेहता, मीरा को दुनिया वाले कितनी पीड़ा पहुंचाए परंतु मीरा टूटी नहीं, बिखरी नहीं, अपने लक्ष्य में बिल्कुल अडिग रही, अचल रही कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। भारत नहीं पूरे विश्व में आज भी मीरा का नाम अमर। अब मीरा के विषय में किसी का मतभेद नहीं, मतवाद नहीं, पक्ष विपक्ष भी नहीं। हम तो बचपन में बहुत से मीरा के जो है ना वो पद याद किए थे, विद्यालयों में पढ़ाया था। और देखो वही बड़े बड़े राजा महाराजा एक से एक हो गए, जिनके आगे पीछे हजारों लोग हाथ जोड़कर घूमते थे, पर आज एक आदमी हाथ जोड़ने वाला नहीं। लोग कहते हैं ना, सौ पूत सवासव नाती, ताको घर दिया न बाती। ऐसा कौन था? रावण। रावण का ऐश्वर्य इतना महान था, इतना मंत्रज्ञ था कि नारद जी कहते कि भाई हमें भी जाकर सभा में तुमरू बजाना पड़ता, गाना पड़ता, पर रावण को आज कोई नाम नहीं, कोई आरती नहीं करता, पूजा नहीं करता। तो देखो, जिसने अपने जीवन, इंद्रियां, मन, बुद्धि परमात्मा से जोड़ दिया, वह समझो मर कर भी अमर है। क्योंकि परमात्मा के विषय में किसी का मतभेद है ही नहीं। वेदांत में परमात्मा किसे कहते पता है ना? सच्चिदानंद भगवान, सत्य चित आनंद, यह नाम है भगवान परमात्मा का स्वरूप। तो प्रत्येक प्राणी अपने जीवन में सत्य चित आनंद चाहता है, चाहे किसी मजहब का हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो। देखो तो वेदांत के सभी अधिकारी हैं, क्योंकि तो वेदांत का किसी भी धर्म, संप्रदाय, मत, वर्ग के साथ कोई भी विरोध नहीं, इसमें कोई अनुबंध नहीं। क्योंकि प्रत्येक प्राणी, प्राणी बोलते जो प्राण संचरण कर रहा, प्राणी में आपको सब आ जाएंगे, पशु पक्षी भी आ जाएंगे। हनुमान जी कपियोनि में थे, जामवान ऋक्ष योनि में थे। तो प्रत्येक प्राणी जिसके अंदर प्राण का संचार है, वह सचित आनंद चाहता है। तो सबके जीवन का लक्ष्य क्या है? सच्चिदानंद। तो जीवन में सिर्फ आपको अपने मनोवृत्ति का, जो आप बैठकर न चाह करके भी कुछ न कुछ चिंतन करते रहते, मन का स्वभाव, आप चाहो चाहे न चाहो, ये हमारी जो मनोवृत्तियां हैं, ये हमेशा कुछ न कुछ अंदर खटपट चलता रहता, चिंतन चलता रहता। तो जैसे अर्जुन ने भगवान को सारथी चुन लिया, ऐसे यदि हम भी आत्मा अनात्मा में से आत्मा को सारथी चुन लेंगे, अपने मनोवृत्ति पर चैतन्य को आरूढ़ कर लेंगे, तो निश्चित ही हम लोग संसार सागर को बड़े मजे से पार कर जाएंगे। करना कुछ नहीं आपको, सिर्फ अपने मन बुद्धि पर इस चैतन्य को बिठा देना है। जिस अंतःकरण के ऊपर अभी काम का साम्राज्य, कामना का, इच्छाओं का, इच्छाओं मतलब इदम में स्यात, ये बहुत बड़ी बीमारी है। यह हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, आपको इच्छा छोड़ना नहीं, इच्छा के ऊपर क्या करना है, परमात्मा को बिठाना। जिस प्रकार से हिमालय से भगवती गंगा चल रही है, उस गंगा में हजारों गंदले नालाओं का संपर्क हो जाता है, जब तक गंदले नालों का गंगा से संपर्क नहीं, तब तक आप उसके पानी को छूने के बाद कहते हैं शुद्ध हो गए, नहाना चाहिए। जैसे ही बरसाती नाला का संपर्क गंगा से हुआ, अब वो गंगा कहलाता है। वाचस्पति मिश्र बहुत बड़े विद्वान, जीवन मुक्त महापुरुष हो गए गृहस्थाश्रम में, उन्होंने अपनी रचना को कहा, हमारी रचना कैसी है, रथ्योदकमीव भाष्यम, भगवान शंकराचार्य का भाष्य तो गंगा के समान है, और हमारी रचना कैसी, रथ्योदक के समान, रथ्योदक बोलते बरसाती नाला। तो बरसाती नाला जैसे गंगा से मिलने के बाद गंगा रूप हो जाता, ऐसे ही हमारा जीवन, हमारी क्रिया कलाप, बिजनेस, व्यापार, कारोबार, यदि हम भगवान से जोड़ दिए तो वह आनंदमय हो जाता। अब कैसे जोड़ना है, तो जैसे आप प्रातः काल उठकर दुकान पर जाते हैं, दुकान खोलते हैं, तो दुकान खोलते समय यदि आपने भगवान नाम लिया, भगवान का चिंतन किया, फिर चिंतन करके दुकान पर बैठे, उस ग्राहक को आप ऐसा समझे कि यह भी एक भगवान का ही स्वरूप है, आत्मस्वरूप है, ऐसा समझ के यदि आप उसके साथ बर्ताव करें लेन देन का, कारोबार का, तो एक तो फायदा कि आप काला बाजार नहीं करेंगे, क्योंकि पता है कि सामने वाले के अंदर भी वही नारायण जो हमारे अंदर नारायण बैठा हुआ है, तो आप हेरा फेरी नहीं करेंगे, शुद्ध व्यापार करेंगे, और व्यापार से लाभ हुआ तो क्या सोचेंगे, भाई भगवान की बहुत बड़ी कृपा, अब ऐसा करेंगे कि इस मुनाफे से भगवान की सेवा करेंगे, ठाकुर जी की सेवा करेंगे, संतों की सेवा करेंगे, सत्संग करेंगे, भंडारा करेंगे, यज्ञ करेंगे, हाँ गौ माता की सेवा करेंगे, और यदि व्यापार में घाटा हुआ तो क्या सोचेंगे, हे प्रभु इस वर्ष कैसे मैं संतों की सेवा करूंगा, यज्ञ कैसे करूंगा, दान पुण्य कैसे करूंगा। तो यदि व्यापार में नाफा हुआ तो भी परमात्मा की स्मृति, घाटा हुआ तो भी परमात्मा की स्मृति। इस प्रकार से यदि हम अपने कारोबार को, व्यवसाय को भगवान से जोड़ दें, तो वह जो आपका कारोबार है, व्यापार है, वह भी ईश्वर की उपासना, रूप से परिणत हो जाएगी, उससे चित्त शुद्ध होगा। और नियम है सत शुद्धो ध्रुवा स्मृति, अंतःकरण के शुद्ध होते ही आप बंधन मुक्त हो जाते हैं। तो बंधन का कारण है कि जो हमारी मनोवृत्तियां संसार की तरफ जा रही हैं। ये क्यों जा रही है? क्योंकि अनादिकाल से हमारे मन में एक बहुत बड़ी भ्रांति है। वो भ्रांति क्या है कि संसार के संसाधन से ही सुख मिलता है। जैसे दुर्योधन के मन में बहुत बड़ी भ्रांति थी, सबने समझाया, भीष्म पितामह ने, द्रोणाचार्य ने, विदुर महाराज ने तो बहुत कुछ कहा समझाया कि दुर्योधन ये कृष्ण ही साक्षात नारायण है, इनकी बात मान ले, परंतु एक नहीं सुना। भरी सभा में भगवान श्री कृष्ण जब शांति दूत बनकर गए उपदेश कर रहे कि भाई कम से कम तो ज्यादा नहीं तो पांच गांव दे दो, उससे काम चल जाएगा। बोला महाराज पांच तो बहुत होते हैं। भगवान का ऐसा है, ठीक है पांच मकान दे दो काम चल जाएगा। तो दुर्योधन ने कहा, क्या कहा, सुच्यग्रम न दास्यामि बिना युद्धे न केशव। हे केशव, तुम्हारी बात सब स्वीकार है, बहुत अच्छी लग रही, पर क्या करो, मैं भी जानता हूं, जानामि धर्मम न मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न मे निवृत्ति, केनापि देव निर्दिष्टेन यथा नियुक्तोस्मि तथा करोमि। दुर्योधन भी बोलने में बहुत चतुर, उसको बड़ा भारी ज्ञान था। किसान के नेता होते ना, जब मंच पर जाएंगे मीडिया के सामने तो क्या बोलेंगे, विश्व बंधुत्व से नीचे कोई बात करता ही नहीं, पूरा दुनिया विश्व बंधु, विश्व ब्रह्म सब बात करेंगे। और थोड़ा सा स्वार्थ पड़े ना तो अपने सगे भाई का भी गला घोट देते। यही बात बोल रहा है दुर्योधन, बड़ा भारी राजनेता था, वो भी सामान्य राजनीतिक नहीं था। बोला महाराज मैं जानता हूं धर्म क्या अधर्म क्या, ये हमारे हैं तो भाई ही पांचों पांडव, खूब मुझे पता है, पर क्या करूं, मन नहीं मानता। अंदर कोई बैठा है वो क्या कहता है, बिना युद्ध के सुई की नोक जितना भी नहीं देना। तो महाराज मैं क्या करूं, मैं देना तो चाहता परंतु ये हमारा मन नहीं मानता। कई बार आप बोलते ना कि मैं चाहता जप करना, ध्यान करना, प्रेम पूरी सत्संग सुनना, पर ये मन जो है ना जाने नहीं देता, हारे नहीं देता, बोलते कि नहीं। इसलिए ऐसा होता है क्योंकि मन आपका मालिक बन गया। तो दुर्योधन को शिक्षा देने के लिए भगवान ने वहां पर अपनी विराट रूप दिखाया। विराट रूप को देखकर भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, विदुर सब तो नमस्कार कर रहे, जय हो बोल रहे। दुर्योधन क्या बोला पता है ना, बोला पकड़ो पकड़ो, भागने मत दो, ये बड़ा भारी जादूगर मायावी है, तांत्रिक है, इसको जाने मत दो। दुशासन सावधान, शकुनी मामा सावधान, साक्षात नारायण भी आ जाए सामने, यदि हमारी आंखें ना हो ना तो पहचान नहीं पाएंगे। भगवान श्री कृष्ण साक्षात नारायण, सारी घटना को दुर्योधन ने, दुशासन ने कानों से सुनी होगी ना, वो भी तो पृथ्वी पर ही था। जो घटना थी आपको द्वारिका की, गोकुल की, मथुरा की, कंस बद की, जरासंध बद की, सब तो उसे पता ही था, ऐसा बात नहीं सुना वो, सब पता। इतना सब सुनने के बावजूद भी दुर्योधन की कानें कितनी बहरी, सारी दुनिया बोल रही कि अरे साक्षात नारायण, जिन्होंने की गिरिराज को छत्ते के समान सात दिन को उठाकर रखा, ये सब बात सुना था दुर्योधन। जरासन जैसे पराक्रमी को धूल चटा दी जिसने सारी बात सुनी, फिर भी उसे समय नहीं आया। तब भगवान देखो कितने मतलब के कृपालु हैं, भगवान श्री कृष्ण कितने कृपालु, कितने करुणालय हैं। भगवान ने दयाकर कहा भाई चलो इसको दिखा दो स्वरूप, सुनी हुई बात से नहीं यदि मानता है तो दिखला दो। तो भगवान ने विराट स्वरूप को दिखाया ताकि इसकी आंखें खुल जाए, फिर भी उसकी आंखें नहीं खुली, बल्कि भगवान के ऊपर आरोप किया कि जादूगर है, तांत्रिक है, मायावी, पकड़ लो, जाने मत दो। तो हमारे जीवन में भी यदि सत्संग नहीं होगा, सत्पुरुषों की संगति नहीं होगी, तो भगवान आ भी जाए ना तो हम पहचान नहीं पाएंगे। श्री सत्संग की बहुत बड़ी महिमा है, इस बात को स्वयं यमाचार्य नचकेता से कहते सत्संग सेवधि, सेवधि बोलते इस खजाना को, उपनिषद की भाषा में सेवधि का अर्थ खजाना। सत्संग सबसे बड़ा खजाना है, अमानत है। आप सत्संग में अपने असली स्वरूप सच्चिदानंद को पहचान लेते हैं तो बंधन का कारण है जो अनादिकाल से हमारे अंतःकरण में चित्त में एक भ्रांति है कि संसार के संसाधन से सुख मिलता है। अच्छा बताओ जब सोते हैं सपना देखते हैं तो सपना में कौन सा संसाधन लेकर जाते हो? कुछ धन लेकर जाते, मकान जाते, कुछ भी नहीं। सपने में कोई संसाधन नहीं और वहां आप बड़े मजे से सपना देखते, वहां जब थक जाते सुसुप्ति में जाते वहां तो कुछ भी नहीं, वहां तो मनी राम भी नहीं, इंद्रियां भी नहीं, मन भी नहीं। सुसुप्ति में आप परम आनंद का अनुभव करते हैं, सुसुप्ति में कुछ भी संसाधन नहीं, यहां तक शरीर नहीं, इंद्रियां नहीं, मन भी विलय हो जाता है अविद्या में, तो परम आनंद का अनुभव होता है। ऐसे ही जागृत काल में भी यदि आप अपने मनोवृत्ति को परमात्मा में समर्पित कर दो तो परम आनंद का अनुभव होगा। शेष कल श्रवण करेंगे। ओम शांति शांति शांति।